नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए समय स्टूडियो में है हमारे साथ वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ राकेश थपलियाल। नमस्कार राकेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार प्रियंका जी, धन्यवाद बहुत बहुत।
और आगे बढ़ें उससे पहले अब तक की हेडलाइन जान लेते हैं। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा, सूर्य कुमार यादव T20 और रोहित शर्मा एक दिवसीय श्रृंखला में टीम की कप्तानी संभालेंगे। महिला क्रिकेट में एशिया कप T20 प्रतियोगिता कल से श्रीलंका में, भारत का पहला मैच कल पाकिस्तान से होगा। सुमित नागल स्वीडिश ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में हार कर बाहर। और जर्मनी में हैम्बर्ग ओपन टेनिस में रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी आज चुनौती पेश करेगी। और राकेश जी, स्टूडियो में आने से चंद मिनटों पहले जो बड़ी खबर सामने आई थी कि श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की आज घोषणा कर दी गई। सूर्य कुमार यादव को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा एक दिवसीय श्रृंखला में टीम की कप्तानी संभालेंगे। दोनों ही श्रृंखला में शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया है। विराट कोहली भी एक दिवसीय श्रृंखला में खेलेंगे। भारतीय टीम श्रीलंका के साथ 3 एक दिवसीय और 3 T20 मैच खेलेगी। पहला T20 मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा, 28 और तीसरा मुकाबला 30 जुलाई को होगा। वहीं एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 2 अगस्त से शुरू होगी। गौतम गंभीर का भारतीय टीम के कोच के तौर पर यह पहला दौरा होगा और ये जो अब घोषणा की गई है उसमें गौतम गंभीर की छाप भी दिख रही है।
नहीं, बिल्कुल दिख रही है, जिस तरह की चीजें चल रही थी, लेकिन अब ये पक्की मुहर लग गई कि भाई कप्तान के रूप में अब सूर्य कुमार यादव को देखा जा रहा है T20 के। और हालांकि अभी देखिए कुछ कह नहीं सकते, अभी पिछले जो जिम्बाब्वे का दौरा था उसमें शुभमन गिल कप्तान थे। पिछला जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है उसमें हार्दिक पांड्या जो है वो वाइस कैप्टन थे, लेकिन आज जो है वो वाइस कैप्टन भी नहीं है, टीम में एक साधारण प्लेयर के रूप में रखे गए हैं। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया।
अटकलें थी कि सूर्य कुमार यादव बनेंगे या हार्दिक पांड्या को मौका मिलेगा, लेकिन बाजी सूर्य कुमार यादव की रही।
बिल्कुल, देखिये सूर्य कुमार यादव ने भी मुंबई की टीम की वो कप्तानी करते हैं और जिस तरीके का कैच उन्होंने पकड़ा, जिस तरह से फील्डिंग का एक नाम जो उन्होंने कमाया है, तो मुझे लगता है वो काफी उनके पक्ष में चीजें चली गई। लेकिन कप्तान बनाते हुए किसी को भी और एक महत्वपूर्ण सीरीज के अंदर वो देखा जाता है कि उनके अंदर कप्तानी की एबिलिटी कितनी है, लेकिन वो उनकी एक परीक्षा भी होगी। हालांकि वो इससे पहले अगर हम देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें 4-1 से सीरीज भी हम जीते थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भी कप्तान अप्तान बने ना, तो बीसीसीआई को चाहिए एक लंबे समय के लिए बनाना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है अभी वो थोड़ा प्रयोग के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि नए कोच भी आए हैं, देखेंगे सूर्य यादव की कप्तानी कैसी रहती है, तो उसके बाद हो सकता है। क्योंकि आप जब एक कप्तान को एक लंबा समय देते हैं, क्या होता है कि जो कप्तान बनता है कुछ प्लेयर भी उसकी तरफ चल देते हैं, सब उसके उसमें आ जाते हैं, और फिर आप अगली सीरीज में कप्तान आप बदल दें अगर, तो वो दिक्कत कहीं ना कहीं आती है। तो मुझे लगता है कि इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की परीक्षा होगी और किस तरह से वो टीम को मैनेज करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण यहां पर देखा जाएगा। हार जीत मुझे नहीं लगता कि इतनी इम्पोर्टेंट उनकी कप्तानी के लिए रहेगी, लेकिन वो टीम को किस तरीके से मैनेज करते हैं, कैसे खिलाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, रोटेशन किस तरीके से करते हैं, और जब ये सब चीजें वो अच्छी करेंगे तो निश्चित रूप से टीम भी जीतेगी हमारी।
जिम्बाब्वे जो दौरे पर गई थी उसमें भी हार जीत से ज्यादा ये दिखा गया था शुभमन गिल कितनी अच्छी कप्तानी करते हैं और जो नए प्लेयर्स को मौका मिला था वो कैसे परफॉर्म करते हैं। और यही जो देख रही हूं, जो टीम जो है वो मिश्रण है, इसमें T20 वर्ल्ड कप के विजेता भी नजर आ रहे हैं, उनकी वापसी हुई है, और जिम्बाब्वे टीम में जो नए खिलाड़ियों को मौका मिला था उन्हें भी दोबारा
दिया। बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे रियान पराग को देखेंगे नए खिलाड़ी से और उनको दोनों टीमों में जगह मिली। अक्षर पटेल तो खैर वो तो वर्ल्ड कप के अच्छा उन्होंने वहां प्रदर्शन किया ही था, लेकिन इसमें जो मैं चीजें देख रहा हूं कि एक दिवसीय टीम की अगर हम बात करें जिसके रोहित शर्मा कप्तान है, तो केएल राहुल की वापसी हुई और श्रेयस अय्यर को भी जगह दी गई है। तो मतलब अनुभव को तवज्जो दी गई है और जो बीसीसीआई की रिलीज आई है उसमें केएल राहुल के आगे विकेट कीपर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब उन्हें विकेट कीपिंग यहां पर करनी पड़ सकती है। ऋषभ पंत और वो दो विकेट कीपर रहेंगे, एक अतिरिक्त जिम्मेवारी उनके ऊपर रहेगी। और जैसा कि होता है कि वो देखिए हिन्दुस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं, लेकिन टीम में रख लो चाहे आप कुछ भी करवाओ।
संजू सैमसन को T20 का विकेट कीपर बनाया गया है और जो एक दिवसीय दौरे में है उसमें आपने जैसे बताया केएल राहुल को विकेट कीपर, ऋषभ पंत को तो
क्योंकि मुझे ध्यान आता है कि सौरभ गांगुली ने ये चीज की थी। उन्होंने जब राहुल द्रविड़ जो अभी तक हमारी टीम के कोच थे वर्ल्ड कप में, उनको उन्होंने कहा था अगर एक दिवसीय क्रिकेट खेलनी है तो आपको विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी। राहुल द्रविड़ विकेट कीपिंग को कभी भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जब जब सौरव गांगुली नहीं होते थे तो राहुल द्रविड़ कप्तानी करते थे, तो अपने कप्तान रहते उन्होंने बहुत रेयर ही विकेट कीपिंग की होगी, तब वो विकेट कीपिंग नहीं करते थे अमूमन, तो इससे लगता है कि वो विकेट कीपिंग नहीं करना चाहते थे। लेकिन एक दिवसीय टीम में उनकी जगह बरकरार रखने के लिए सौरभ गांगुली ने यह फार्मूला दिया था, तो ऐसे ही केएल राहुल की टीम में जगह बरकरार रखने के लिए फार्मूला निकाला गया कि भाई एक सेकंड विकेट कीपर आप इसमें के रूप में आपकी वो भूमिका निभानी पड़ेगी। तो अब केएल राहुल क्योंकि बाहर चल रहे थे तो जो टीम से बाहर होता कहता भाई कुछ भी करवा लो टीम में तो रखो आप।
सही बात है। और जैसे कल भी रैंकिंग में आई थी तो सूर्य कुमार यादव नंबर दो पर बल्लेबाजों में बरकरार है, और भी वाशिंगटन सुंदर सबकी उसमें बहुत सुधार देखने को मिला है। और वाशिंगटन सुंदर की भी बात करें तो उन्होंने बहुत जिम्बाब्वे में मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे, अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छा करके दिखाया, तो कुल मिलाकर अच्छी टीम है एक बार हमारे पास।
प्रियंका हमारे पास इतनी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है, इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, अब इनको मैनेज कैसे करना है, मौके कैसे देने हैं आपको, ये कोच की बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी रहेगी, बीसीसीआई की बड़ी जिम्मेवारी रहेगी, चयनकर्ताओं की। एक अच्छा पूल हमारे पास खिलाड़ियों का है, अगर आप किसी अच्छे खिलाड़ी को मौके नहीं मिलेंगे तो वो भी बड़ा निराश होता है, और आपको दूसरे सभी खिलाड़ियों को मौके भी देने हैं। तो मुझे लगता है ये पुनर्गठन के दौर से हमारी टीम इस समय गुजर रही है, क्योंकि T20 से हमने देखा जैसे रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने, हमारे रविंद्र जडेजा ने, एक साथ तीन प्लेयरों ने संन्यास लिया, और मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में भी बोला था कि संन्यास तीनों ने लिया लेकिन कोई इनके लिए कह नहीं रहा कि भाई वापसी करो, क्योंकि हमारी बेंच स्ट्रेंथ पे सबको भरोसा है कि नए खिलाड़ी हमारे उभरते हुए इतने जबरदस्त हैं। लेकिन मैं सूर्य कुमार यादव के लिए कहना चाहूंगा कि उन्हें ये सीखना होगा कि जो कप्तान है ना दो तरह से होते हैं, एक तो जो बातों से टीम को प्रेरित करते हैं, एक खुद के प्रदर्शन से टीम को प्रेरित करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो अच्छा प्रदर्शन करके टीम को प्रेरित करने वाले कप्तान बने कि आगे बढ़कर, क्योंकि जब कप्तान अपने बल्ले से और मैदान में फील्डिंग से अपना प्रदर्शन अच्छा करता है तो वो टीम के खिलाड़ियों को डिक्टेट कर सकता है। अगर उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, खाली बातें आप प्रेरणादायी करेंगे तो वो चलने वाला नहीं होता।
हालांकि उनके बातें करने का स्टाइल माना जाता है कि रोहित शर्मा से काफी मिलता जुलता है, तो अब देखते हैं कि अब तो परीक्षा है इनके लिए भी, सूर्य कुमार यादव की भी, और शुभमन गिल तो पास हो गए अपनी अग्नि परीक्षा में, कैसा रहता है इनका हाल?
देखिए शुभमन गिल तो बहुत अच्छे प्लेयर थे, सब कुछ थे, मैं तो उन्हें वर्ल्ड कप में भी देखना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है आपकी फॉर्म खराब आ जाती है या कंप्लेसेंसी आ जाती है, तो उसका खामियाजा उन्हें थोड़ा सा भुगतना पड़ा है।
पुरुष क्रिकेट से अब चलते हैं महिलाओं के क्रिकेट में, उनका एशिया कप T20 प्रतियोगिता कल से श्रीलंका के दांबुला में शुरू हो रही है। इस प्रतियोगिता के सभी मैच रणगिरी दांबुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। पहला मैच संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के बीच होगा। भारत का मैच भी कल ही पाकिस्तान से होना है। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम इस मैच के साथ अपना विजयी अभियान शुरू करने का प्रयास करेगी। भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रखा गया है, जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड और मलेशिया ग्रुप बी में हैं। तो हालांकि देखा जाए तो हमारी जो भारतीय टीम है वो एशिया कप T20 ट्रॉफी जीतना चाहेगी, और चार बार जीत चुकी है। 2018 में जब बांग्लादेश जीती थी वो अलग बात है, लेकिन अभी दक्षिण अफ्रीका के साथ जिस तरह से निकल कर आई है, जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, वो कमाल है।
बिल्कुल, देखिए पिछड़ने के बाद उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और हमारी जो टीम है इसमें बड़ी वेल सेटल्ड टीम लग रही है। एशियन गेम्स का भी गोल्ड मेडल हमने जीता, इसके भी हम विजेता हैं। और बड़ी हैरानी की बात है, अभी तक क्या होता था कि पिछले कुछ जो आईसीसी टूर्नामेंट हुआ उसमें जो पुरुष टीम थी हमारे उसका भारत और पाकिस्तान का पहला मैच रख दिया जाता था, तो मैंने इसका बड़ा वो किया कि भाई ऐसा क्यों, इससे दोनों टीमों के खिलाड़ियों पर बहुत जबरदस्त प्रेशर आता है। तो उधर तो अब छोड़ दिया, पहला मैच भारत पाकिस्तान का रखना आईसीसी ने, लेकिन यहां जो महिलाओं का एशिया कप है इसमें पहला मुकाबला भारत का और पाकिस्तान का रख दिया। हालांकि महिलाओं में उतना टेंस हिसाब होता नहीं है और भारतीय टीम काफी मजबूत है, और उनका जो देखिये पाकिस्तान के खिलाफ जो रिकॉर्ड है वो भी बड़ा जबरदस्त है कि 14 मैच खेले तो 11 भारत ने उसमें से जीते हैं, और अगर हम एशिया कप कहीं देखें तो 6 में से 5 मैच भारत ने जीते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि वैसा प्रेशर होगा, और एक अच्छी सीरीज हम लड़ के जो है ड्रॉ करा के आ रहे हैं, और हमारे पास अच्छी बल्लेबाज भी हैं, स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं, पूजा वस्त्राकर के रूप में जो तेज गेंदबाज, 4 विकेट उन्होंने, राधा यादव बहुत अच्छी जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर है, दीप्ति शर्मा, हमें ये देखिए खिलाड़ी फील्डर्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बताऊं कि 1992 के आसपास दयानिधि अडुल जी हिंदुस्तान की कप्तान होती थी, एक वर्ल्ड कप था उसमें टीम जा रही थी, तो वो बताती थी कि हमारे प्लेयर्स के आप शॉट्स देखिए कितने जबरदस्त मारती हैं, लेकिन हमें वो मजा नहीं आता था। पर ये मैं जब पिछले कुछ सालों से अब देख रहा हूं कि हरमनप्रीत कौर जिस तरह के शॉट्स लगाती हैं, तो वो मेरे लिए, क्योंकि मैंने पुरानी खिलाड़ियों को भी देखा हुआ है 90 के दशक से और आज की खिलाड़ियों के शॉट, तो जमीन आसमान का अंतर है। और इतना मजा आता है अब इनके शॉट्स देखने में, इनकी फील्डिंग आप देखें तो गेंदबाजी आप देखें, हर चीज में बड़ा जबरदस्त मजा आता है।
और स्मृति का जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला है वो भी लाजवाब रहा है, खासकर दक्षिण अफ्रीका के साथ जो।
बिल्कुल, देखिए बड़ी टीमों के खिलाफ जब आप खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे घर हो या बाहर हो। और सबसे बड़ी चीज है, देखिए इनकी क्रिकेट में अब एंटरटेनमेंट आ गई, लोगों को देखने में मजा आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वो क्यों, जब आप अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं और डायरेक्ट हिट से रनआउट भी हमारे जो खिलाड़ी करते हैं, दीप्ति शर्मा वगैरह का, जब आप देखते हैं तो मतलब क्रिकेट के हर लिहाज से बहुत जबरदस्त मजा आता है मैच में।
और पेरिस ओलंपिक खेलों में इस बार भारत के 6 पहलवान कुश्ती के अखाड़े में उतरेंगे। ओलंपिक खेलों में कुश्ती में भारत के सफर पर एक नजर डालते हैं।
पेरिस में भारतीय पहलवानों पर भी पदक दिलाने की जिम्मेदारी रहेगी। भारत ने ओलंपिक में हॉकी के बाद सर्वाधिक पदक कुश्ती में हासिल किए हैं। कुश्ती में अब तक भारत 2 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। भारत ने 1920 में पहली बार एंटवर्प ओलंपिक खेलों में 2 पहलवानों को उतारा था। इसके बाद 1924, 1928, 1932 और 1976 के ओलंपिक खेल ही ऐसे रहे जिनमें भारत ने कुश्ती में हिस्सा नहीं लिया। पहलवान रणधीर सिंह 1920 में भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन आखिर में ये श्रेय खाशाबा दादा साहेब जाधव को मिला। 23 जुलाई 1952 का दिन भारतीय कुश्ती के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। इसी दिन जाधव ने हेलसिंकी ओलंपिक में बैंटम वेट में कांस्य पदक जीता था। इसके 56 साल बाद 2008 में पेइचिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कुश्ती में भारत को पदक दिलाया। इसके 4 साल बाद लंदन ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक हासिल किया, जबकि योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता। साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक खेल 2016 में कांस्य पदक जीतकर यह सिलसिला जारी रखा। बाद में टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने रजत और रंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता। भारत ने पेइचिंग ओलंपिक से अब तक हर ओलंपिक में पदक जीता है, ऐसे में पेरिस ओलंपिक में भाग ले रहे पहलवानों के लिए इसे बढ़ाना एक चुनौती होगी। इस बार भारत से केवल 1 पुरुष पहलवान अमन सहरावत और 5 महिला पहलवान अंतिम पंघाल, निशा दहिया, रितिका हुड्डा, अंशु मलिक और विनेश फोगाट ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं। भले ही कुछ विवाद हुए हों, लेकिन देश को एक बार फिर कुश्ती से पदक की आस जरूर रहेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
राकेश जी, इनमें से सभी पहलवान अपने अपने भारत वर्ग में पदक के दावेदार हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अंतिम पंघाल और अमन सहरावत, उनसे बहुत उम्मीदें हैं।
देखिए बहुत जबरदस्त है और इसमें जो अनुभवी हमारी पहलवान है विनेश फोगाट और अंशु, उनको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देखिए ओलंपिक्स के अंदर क्या होता है कि एक युवा जोश तो काम आता है, लेकिन कभी कभी जो अनुभव है ना वो भी बहुत काम आता है। और 7 पदक पिछली बार हमारे आए थे, है ना, और 2 पहलवान जिन्होंने पदक जीते थे, रवि दहिया और बजरंग पुनिया, वो दोनों ही इसका हिस्सा नहीं है। और कभी हम देखिए कल्पना नहीं कर सकते थे कि कुश्ती में 5 महिला पहलवान हमारी होंगी
और 1 पुरुष होंगे,
और 1 पुरुष होगा,
दहिया को हरा के ही सहरावत आए।
तो ये मतलब बड़ी एक अद्भुत चीज है और इससे पता लगता है कि महिला कुश्ती को पूरे देश में कितना बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से भी। और ये लड़कियां देखिए छोटी उम्र की हैं, इनके कई ओलंपिक खेलने के चांसेस हैं और ये अगर ओलंपिक में यहां सफलता पाती है तो अनेक वर्ल्ड चैंपियनशिपों में, एशियन गेम्स में, मतलब हमारे पास ये इतना अच्छा टैलेंट रहेगा अगर 5 हमारी महिला पहलवान इसमें जा रही है तो बहुत बड़ी ये बात।
क्योंकि रितिका हुड्डा भी अंडर 23 में भारत की पहली महिला भारतीय चैंपियन रह चुकी हैं, तो बहुत उम्मीदें हैं हमें।
लेकिन देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतना और साथ में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है।
जाते जाते कुछ अन्य खेल खबरों पर नजर। सुमित नागर स्वीडिश ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नवाने ने 6-4, 6-2 से पराजित किया। इससे पहले नागर पुरुष डबल्स में भी पहले दौर में बाहर हो गए थे। एक अन्य प्री क्वार्टर फाइनल में राफेल नडाल का सामना इस समय ब्रिटेन के कैमरॉन नॉरी से चल रहा है। उधर जर्मनी में हैमबर्ग ओपन टेनिस प्रतियोगिता में रोहन बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना पहले दौर में आज जर्मनी के जैकब श्नाइडर और मार्क वॉल्नर से होगा। समय कह रहा है अनुमति ली जाए। राकेश जी, आप स्टूडियो में आई चर्चा की इसके लिए धन्यवाद।
शुक्रिया आपका।
श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा स्पोर्ट्स कैन की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।